अगली बात में देख लीजिए, अब अल्लाह अपने नबी से हटकर उनकी बीवियों की तरफ आता है। इन ततूबा इलल्लाह फकत सगत कुलूबुकुमा, अगर तुम दोनों अल्लाह से तौबा करती हो तो ये तुम्हारे लिए बेहतर है, क्योंकि तुम्हारे दिल सीधी राह से हट गए हैं। ये किसको कहा जा रहा है? ततूबा, तस्निया, दो बीवियों, वही जिनका ऊपर जिक्र है कि अल्लाह की बंदी हो, तुम्हारा दिल थोड़ी देर में चेंज हो गए थे। कद सगत, सगत में ता क्या है? मुअन्नस की है, यही होनी थी, मुझे पता है ता जो है तो मुअन्नस ही होगी ना, यानी दिल टेढ़े हो गए, जिसको आप कहते हैं ना क्रुकेडनेस आ गई है, थोड़ी देर के लिए तुम्हारी जुबान फिसल गई। और मजे की बात नोट कीजिएगा, होना क्या चाहिए था? कद सगत लिसानुकुमा, जुबान से बात बताई थी ना, लेकिन लिसान की जगह क्या बोला? कुलूबुकुमा, क्योंकि दिल टेढ़े होते हैं ना, फिर जुबान पे शिकवे आते हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि फाइन नफिल जसदी लमुदगा, जिस्म में गोश्त का एक टुकड़ा है, अगर वो सीधा है तो सारा जिस्म सीधा है, वो टेढ़ा है तो सब टेढ़ा है। वही जुबानें शिकवे करती हैं जिनके दिल टेढ़े होते हैं। तो यहां दिल की बात करके जुबान मुराद है, कि ये जो तुमने आपस में, ये कोई बात नहीं, हमें पता है तुम इंसान हो और तुम्हारे से ऐसी बात हो गई है और तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये जो लफ्ज है ना सगत, सीन गैन वाओ, इसका रूट है सगव, अरबी जुबान में मुड़ जाने और टेढ़ा हो जाने के मानी में इस्तेमाल होता है। शाह वलीउल्लाह देहलवी बहुत मारूफ मुहद्दिस हैं, उन्होंने अपने कुरान में इसका तर्जमा क्या किया, असल में उनकी फारसी का तर्जमा है लेकिन उसको फिर उर्दू में करते हैं, कहते हैं कि हर आईना कज शुदा अस दिले शुमा, क्या मतलब है? कज हो गए हैं दिल तुम्हारे। और इसी तरह से इब्ने मसूद, इब्ने अब्बास और सुफियान सॉरी और दहा के चार पांच लोग हैं, वो कहते हैं जागत कुलूबुकुमा, सगत से मुरा जागत, और जागत आप पीछे पढ़ चुके हैं, यजीगो जागा, यानी तुम्हारे दिल राह रास से हट गए हैं। इमाम राजी, वो भी एक मुफस्सिर हैं, वो कहते हैं, अरबी की कोटेशन छोड़ के उर्दू में पढ़ देती हूँ, हक से हट गए हैं, और हक से मुराद रसूलुल्लाह का हक है, यानी अल्लाह के नबी का हक नहीं तुम दे रही इस वक्त उसके राज को अफशा करके। इसी तरह अलामा आलूसी, ये भी एक मुफस्सिर हैं, वो इसकी तफसीर में लिखते हैं, तुम पर वाजिब तो ये है कि रसूलुल्लाह जो कुछ पसंद करें इसे पसंद करने में, और जो कुछ आप नापसंद करें इसे नापसंद करने में आपकी मुवाफकत करो, कोऑर्डिनेट करो, मगर तुम्हारे दिल इस मामले में आपकी मुवाफकत से हटकर आपकी मुखालफत की तरफ मुड़ गए हैं। तो सारी बातों का खुलासा क्या है कि थोड़ी सी तुम्हारी सोच भटक गई, कि नबी की बात को अहमियत ही नहीं थी, शौहर की बात समझा नबी की बात ना समझा, लिहाजा वइन तज़ाहरा अलैही, बस अगर तुमने अब एक दूसरे की मदद की, किसके मुकाबले में? नबी के मुकाबले में जत्थेबाजी की, तो याद रखो अगर तुमने इस तरह से कर लिया तो फइन्नल्लाह, तो बेशक अल्लाह ताला क्या करेगा। अब इस अगले हिस्से को सुनते हुए जरा महसूस करें कि अल्लाह के नबी की बीवियों ने इनको सुन के क्या सोचा होगा, कि फइन्नल्लाह हुवा मौलाहू, वो अल्लाह तो उसका मौला है, किसका? तुम्हारे शोहर का। व जिब्रीलू, और उसके बाद जिब्रील भी। व सालेहुल मोमिनीन, और तमाम साले मोमिन। वल मलाइकातु, और सब मलाइका। बाद ज़ालिका, इसके बाद, किसके बाद? जो तुम उसके साथ मामला कर रही हो। ज़हीरुन, मददगार है। क्या समझ आया? अब जरा इस आयत पे वापस जाएं, मैं थोड़ा सा आपको गौर कराऊं। देखिए, मौला हु, जिब्रीलू, सालेहू और मलाइकातु, ये तू 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 सब क्या बना रही है इन सबको? बोलिए, फाइल, यानी अल्लाह ही इसका मौला नहीं है, जिब्रील, साले मोमिनीन और फरिश्ते भी इस नबी के दोस्त हैं। अगर ये जुमला ऐसे होता, हुआ मौलाहू व जिब्रील व सालेहल मोमिनीन वल मलाइकता, तो क्या मानी होता? कि अल्लाह इस शख्स का मौला भी है और अल्लाह जिब्रील, साले मोमिनीन और फरिश्तों का भी मौला है। फाइल और मफूल का फर्क है, जबर और पेश का। गोया के सब इस नबी से प्यार करते हैं, तुम अगर इसकी बात खोलना चाहोगी तो वो खुलेगा नहीं। नतीजा क्या निकलेगा? कि तुम इसके साथ अपना मामला जो है वो सही रखो, और बाद अजालिका, इसके बाद, यानी इस नबी की बात को कोई दूसरी तरफ लेके जाएगा, डोंट वरी, अल्लाह मदद नबी की करेगा। बात वाज़े? अब आप देखिए कि इस हिस्से में चंद बातें हैं, और वो क्या है? पहली बात यह कि नबी के मुकाबले में जिसने जत्थेबंदी की, नुकसान उसका ही होगा। आज पूरी दुनिया मिल जाए मोहम्मद रसूलुल्लाह पर कीचड़ उछालने के लिए, आपकी जात पे धब्बे लगाने के लिए, نقصان ان کا ہوگا، مدد نبی کی ہوگی. اور جس کا مولا، جس کا دوست اللہ تعالیٰ ہو جائے، آپ بتا سکتے ہیں کہ اس کا کبھی کوئی نقصان ہوگا؟ اچھا، اب یہاں ایک چھوٹی سی بات کر لیتے ہیں. بعض دفعہ لوگ ایسی باتیں سن کے پھر اللہ کے نبی کی بیویوں کے بارے میں تھوڑے سے کیئر لیسلی بات کرنے لگتے ہیں کہ ہائے کتنی ایسی تھی، کیا اللہ کے نبی کے خلاف ایسی باتیں کرتی تھی، یہ کرتی تھی، وہ کرتی تھی. تو تھوڑا سا اس کو بھی سمجھ لیجئے، کیونکہ عملی زندگی کی بات ہے. آپ دیکھیے کہ ایک ہی بات بار بار آ رہی ہے نا، کردار سازی، کردار سازی. یہاں کیا آ رہا ہے؟ ان تظاہر علیہ. اور تظاہر کہتے ہیں کسی کے مقابلے میں باہن تابن کرنا. یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ میں سے کوئی دو چار لوگ مل جائیں اپنا پوائنٹ آف ویو بیان کرنے کے لیے اور سب کا پوائنٹ آف ویو بنا کے پیش کر دیں. سمجھ آ گئے؟ غلط چیز پر تعاون کر دینا. اللہ کے نبی کی بیویوں کے بارے میں یہ کہنا، اور یہاں لگ کیا رہا ہے کہ بات تو دو بیویوں کی تھی، دیکھنے میں لگ رہا ہے ساری بیویوں کی بات ہے. اور یہ ساری باتیں کیا ہے؟ چند روایتیں سنا دیتی ہوں، آپ کو بہت سارا کچھ واضح سمجھ آئے گا. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ بہترین مفسر ہیں، اور میں آپ کو بتاؤں کہ اب ان کی تفسیر اردو میں بھی ہے. اگر کبھی آپ کے لیے بھی اتنی فائدہ مند نہیں ہوگی اس لحاظ سے، کیونکہ اس میں وہ واقعاتی رنگ نہیں ہے، لیکن بہرحال یہ کہ یہ ایک عربی میں تھی، اب اردو میں موجود ہے. وہ لکھتے ہیں، میں یہ ایک مدت سے اس فکر میں تھا کہ حضرت عمر سے پوچھوں کہ رسول اللہ کی بیویوں میں سے وہ کون سی دو بیویاں تھیں جنہوں نے اللہ کے نبی کے مقابلے میں جتھے بازی کر لی تھی. جیسے ہمارے دل میں آتا ہے تو ابن عباس کے بھی آتا تھا، تو کہا ذرا میں عمر سے پوچھوں، شاید ان کو پتا ہو، کیونکہ ان کی بیٹی نبی کی بیوی تھی. خیر، جن کے بارے میں یہ بات تھی کہ ان تتوب الی اللہ فقد صغت قلوبکما، لیکن ان کی ہیبت کی وجہ سے میری ہمت نہ پڑتی تھی، عمر سے ڈرتے ہوئے نہیں پوچھ سکتے تھے. آخر ایک مرتبہ وہ حج کے لیے تشریف لے گئے تو میں ان کے ساتھ گیا. واپسی پر راستے میں ایک جگہ ان کو وضو کراتے ہوئے مجھے موقع مل گیا. میں نے ان سے یہ سوال پوچھ لیا، انہوں نے جواب دیا وہ عائشہ اور حفصہ تھی، ایک ان کی اپنی بیٹی اور ایک ابو بکر کی بیٹی. پھر انہوں نے بیان کرنا شروع کیا کہ ہم قریش کے لوگ اپنی عورتوں کو دبا کر رکھنے کے عادی تھے. جب ہم مدینہ آئے تو ہمیں یہاں ایسے لوگ ملے جن پر ان کی بیویاں حاوی تھیں. یعنی مدینہ کی عورتیں ڈومیننٹ ہیں اپنے مردوں پہ، جبکہ مکہ کے مرد اپنی بیویوں پہ ڈومیننٹ ہیں. اور یہی سبق ہماری عورتیں بھی ان سے سیکھنے لگ گئیں. ماحول کا اثر ہو گیا، جیسے ویسٹ میں آ کے پاکستانی عورتیں بھی دلیر ہو جاتی ہیں، ان کو پتہ لگ جاتا ہے کہ حکومت نے ہمارے بڑے اختیارات رکھے ہیں، تو وہ بھی ذرا اپنے رائٹس لینے لگتی ہیں. ایک روز میں اپنی بیوی پر ناراض ہوا. کون ناراض ہوئے؟ عمر اپنی بیوی سے ناراض ہوئے. تو کیا دیکھتا ہوں کہ وہ مجھے پلٹ کر جواب دے رہی ہے. یعنی عمر جیسا بندہ اور اس کی بیوی آگے سے جواب دے. عربی کے جو الفاظ ہیں وہ کیا ہے کہ فاذا ہی تراج یونی، یعنی آگے سے جواب دیتی ہے. مجھے بڑا ناگوار ہوا کہ مجھے پلٹ کر جواب دے. اس نے کہا، آپ اس بات پر کیوں اتنا بگڑتے ہیں کہ میں آپ کو پلٹ کر جواب دوں؟ خدا کی قسم، رسول اللہ کی بیویاں تو اللہ کے نبی کو دو بدو جواب دیتی ہیں، یعنی آگے سے بولتی ہیں. اصل لفظ کیا ہے؟ لا یراج نہ ہو، یعنی آگے سے بات کرتی ہیں. اور ان میں کوئی تو ایسی ہے جو دن دن بھر اٹھی رہتی ہے. یہ بخاری کے الفاظ ہیں. اور یہ بھی ہے کہ اللہ کے نبی اس سے دن بھر ناراض رہتے ہیں. اب یہ بات سن کے عمر کو کہاں اپنی بیوی یاد رہی، فکر کس کی پڑ گئی؟ بیٹی کی پڑ گئی کہ میری بیٹی تو ایسی لاڈلی نہیں ہے کہ بےچارے میاں کا جینا دھوبر کیا. اور شریف مرد مل جائیں تو عورتیں سمجھتی ہیں بس ہم دیکھنے اب جینا دھوبر کریں گے. عمر نے کیا کیا؟ کہتے ہیں یہ سن کر میں گھر سے نکلا اور حفصہ کے گھر گیا. یہ ہوتا ہے اصل بات. کبھی کوئی غلطی جھگڑا ہو نا تو سب سے پہلے اپنے گھر کو پوچھنا چاہیے. جو حضرت عمر کی بیٹی تھی اور آپ کی بیوی تھی، میں نے اس سے پوچھا کیا تو رسول اللہ کو دو بدو جواب دیتی ہے؟ اس نے کہا ہاں. بیوی تھی، لاڈ تھے اور لاڈلی بھی تھی. میں نے پوچھا اور کیا تم میں سے کوئی دن دن بھر رسول اللہ سے روٹھی رہتی ہے؟ اور بخاری کی روایت میں سے اپوزٹ ہے کہ اللہ کے نبی اس سے روٹھے رہتے ہیں. اس نے کہا کہ ہاں. میں نے کہا نامراد ہو گئی اور گھاٹے میں پڑ گئی وہ عورت جو تم میں سے ایسا کرے. یہ عمر کے الفاظ ہیں. کیا تم میں سے کوئی اس بات سے بے خوف ہو گئی ہے کہ اپنے رسول کے غضب کی وجہ سے اللہ اس پر غضبناک ہو جائے اور وہ ہلاکت میں پڑ جائے؟ رسول اللہ کے ساتھ کبھی زبان درازی نہ کر. یہاں بھی وہ الفاظ ہیں، لا تراجی عربی میں جو الفاظ ہیں، اور نہ ان سے کسی چیز کا مطالبہ کر. میرے مال سے تیرا جو جی چاہے مانگ لیا کر. بیٹی کو کہہ رہے مجھ سے مانگ لو، نبی سے نہ مانگنا. تو اس بات سے کسی دھوکے میں نہ پڑ کہ تیری پڑوسن کون مراد ہے؟ حضرت عائشہ تجھ سے زیادہ خوبصورت اور رسول اللہ کو زیادہ محبوب ہے. اس کے بعد میں وہاں سے نکل کر ام سلمہ کے پاس پہنچا. जो मेरी रिश्तेदार थी। पहले बेटी की खबर ली, उसको नसीहत की, अब उम्मे सलमा के पास पहुंची, रिश्तेदार थी, और मैंने इस मामले में इनसे बात की। अब जाके उनको भी ये समझाने लग गए कि तुम तो नहीं अल्लाह के नबी के साथ ऐसे मामले करती। उन्होंने कहा, इब्ने खत्ताब, तुम भी अजीब आदमी हो, हर मामले में दखल देने चले हो। हज़रत उमर कहते, उनकी इस बात ने तो मेरी हिम्मत ही तोड़ दी, यानी उन्होंने नहीं कोई लिफ्ट कराया। उन्होंने कहा, चलो तुम हमारे मामले में ना बोलो। फिर ऐसा हुआ कि मेरा एक अंसारी पड़ोसी रात के वक्त मेरे घर आया और इसने मुझे पुकारा। हम दोनों बारी बारी रसूलुल्लाह की मजलिस में हाजिर होते थे, ये गौर से सुनिएगा, और जो बात किसी की बारी के दिन होती थी वो दूसरे को बता देता था। काफ़ी लोगों को बात ये पहले पता कि हज़रत उमर ने अपने हमसाए के साथ बारी लगाई हुई थी कि मैं जब तिजारत के लिए बाजार जाता हूँ तो तुम अल्लाह के नबी की महफिल में जाके बैठ जाया करो, ताकि मेरी गैर मौजूदगी में अगर कोई बात वहाँ हो तो मुझे बाद में बताओ। ज़माना वो था कि जब हमें गस्सान के हमले का ख़तरा था, ये कबीला था वो मुसलमानों पर हमले की तैयारियों में था, इसके पुकारने पर जब मैं निकला और इसने कहा, बड़ा हादसा पेश आ गया है। मैंने कहा, क्या गस्सानी चढ़ाए? यानी रात के वक्त हमसाए ने आवाज़ लगाई कि जल्दी आओ, बहुत बड़ी बात हो गई। तो मैंने कहा, अच्छा, क्या गस्सान कबीले ने मुसलमानों पर हमला कर दिया? इसने कहा, नहीं, इससे भी ज़्यादा बड़ा मामला है, रसूलुल्लाह ने अपनी बीवियों को तलाक दे दी है। मैंने कहा, बर्बाद हो गई और नामुराद हो गई हफ्सा। फिक्र अपनी बेटी की पड़ी हुई है ना। बुखारी के अल्फाज है, जागी मान वो हफ्सत व आयशा। मुझे पहले ही अंदेशा था कि ये होने वाली बात है, यानी ये मेरी बेटी के मिजाज में जरा सा नशूज है तो ये कुछ ना कुछ काम करके आएगी। और इसके बाद फिर आगे किस्सा कहते हैं, ये वही है जो पीछे आयते तहजीर थी। असल में आपने इला किया था अपनी बीवियों से, लेकिन खबर ये फैल गई कि तलाक दे दी है। यहां देखिए कि क्या वो घराने थे और क्या वहां की खबरें थी। तो लिहाजा ये सारी बातें पढ़कर हमें भी अपने ऊपर लेना है, बीवी शोहर के आगे इस तरह बोले, जुबान दराजी करे या कुछ करे, ये बेअदबी है। देखिए, अल्लाह ने एक रिजाल का दर्जा दे दिया ना, रिजाल कवामून अलल निसा बिमा फद्दलल्लाहु बादहुम अला बाद, और एक जगह उनको तुम पर एक दर्जा है। ये एक दर्जा इज्जत का दर्जा है। आप जितनी मर्जी पढ़ी लिखी हैं, आप जितनी मर्जी साथ पढ़ती हैं, उनके साथ जॉब करती हैं, आप जो भी मियां बीवी के आपस में कोऑर्डिनेशन है, इक्वालिटी है, मर्द का एक दर्जा तो बहरहाल है। तूतकार और नाम लेकर एक दूसरे को इस तरह करना, ये मायूब बात होती है। इसको सूए अदब कहते हैं अरबी में। पसंद नहीं करते कि बीवी मियाँ के साथ इस तरह का मामला करे। और इसी तरह से आप देखिए कि अल्लाह के नबी तो नहीं बोले, अब जब अल्लाह के नबी के आगे आपकी बीवियां बोलती होंगी बिलफर्ज, तो आप भी तो ऊंची आवाज से बोल सकते थे ना, इसकी कोई रिवायत नहीं है। क्या मिजाज था आपका, ठंडे मिजाज के थे, और इसी वजह से फिर बाज़ मजूरत ज्यादा हो जाती है। एक बंदा देखे कि आगे से कोई दूसरा बोलता ही नहीं, तो दिन ब दिन वो इलास्टिक की तरह खुलता ही जाता है। खैर, अब आगे अल्लाह डांटता है, पहले तो उमर की डांट थी ना, अब जरा अगली आयत को सुनिएगा कि अल्लाह अपने नबी की बीवियों को क्या कहते हैं। असा रब्बुहु इन तल्लक्कुन्ना अयुब्दिलहु अज़्वाजन खैरम मिनकुन्ना। उम्मीद है, असा यानी इट्स क्वाइट पॉसिबल, बईद नहीं, दूर नहीं ये बात, कि इन तल्लक्कुन्ना, अगर नबी तुम सब बीवियों को तलाक दे दे तो अल्लाह क्या करेगा, अयुब्दिलहु, कि वो उसके लिए बदल के ले आएगा, अज़्वाजन, बीवियां, खैरम मिनकुन्ना, तुमसे अच्छी। यानी किसी खुशफहमी में मत रहना कि अब अल्लाह अपने नबी को और बीवियां नहीं देगा, अल्लाह तो उसको नई बीवियां देगा। और वो बीवियां कैसी होंगी, इससे आगे जरा आप एक नंबरिंग कर लीजिए कि जब भी आपने अपने बेटे के लिए बीवी ढूंढनी है, भाई के लिए, या जिसको भी रिश्ता ढूंढना है, तो आने वाली लड़की में ये खूबियां होनी चाहिए। अल्लाह ने कहा है ना कि बीवी ऐसी देगा जो, नंबर एक, मुस्लिमातिन, सच्ची मुसलमान, मोमिनातिन, बा ईमान, कानितातिन, इतात गुजार, कनूत, दवाम और आजजी का नाम होता है, ताइबात, तौबा गुजार, यानी हो सकता है पिछली जिंदगी में कोई गुनाह किया हो लेकिन अब सच्चे दिल से वो उस पर तौबा कर चुकी हैं, आबिदात, इबादत गुजार, अल्लाह के आगे झुकने वालियां, हजरत जैनब की तरह रातों को खड़े होकर अपनी चुटिया को बांधने वालियां, और उससे भी बढ़कर की इबादत करें। फिर साइहात, रोजेदार, या अल्लाह के रास्ते में गर्दिश करने वालियां, अल्लाह के दीन के लिए भाग दौड़ करने वालियां, सही बात, शौहर देखी हुई, यानी बेवा या मुतल्लिका। सही बात कहती है उस औरत का जो पहले से शौहर रखती हो, फिर तलाक या बेवगी की सूरत में दूसरे मर्द के हाथ में आए। और अगली खूबी, वह अबकारा, कुंवारियां, कि अल्लाह अपने नबी को अभी भी कुंवारी औरतें दे सकता है, तुम किसी खुशफहमी में ना रहना। यहां आप देखिए कि हमारे लिए एक छोटी सी बात है, और वो क्या है कि अच्छी बीवी की यही खूबियां होती हैं, अच्छी बीवी की। आज अगर आप अपने बेटे से कहें ना कि मैं तुम्हारे लिए दुल्हन ढूंढ रही हूं जो मुस्लिमात मोमिना साए खाता, वो कहेगा ये कोई बुरके वाली आ रही है। आप पूछे सर अपने बेटों को, बेटा तुम्हारे लिए बीवी कैसी ढूंढू, और आप अपनी चॉइस बता देना, मुस्लिमात कानित आबिदात आए, वो कहेगा लो मुझे किसी मदरसे वाली नहीं चाहिए। हालांकि आप देखिए ये एक बेहतरीन औरत का मजमू है। अल्लाह पहले तो मुझे ऐसा बना दे, फिर आप सबको भी ऐसा बना दे। अच्छी बीवियां ऐसी ही होती हैं, और इस चीज की जरूरत होती है। अब देखिए कि बात दो एक तीन बीवियों की चल रही है और डांट सारियों को पड़ रही है कि अगर इन्होंने तो ये काम कर लिया तो ये बात सामने है, तुमने भी अगर जिंदगी में कभी ऐसा कोई मामला नबी से किया तो तुम्हारी भी खुशफहमी दूर हो जाएगी। बुखारी में रिवायत है हजरत अनस से कि हजरत उमर ने फरमाया कि अल्लाह के नबी की बीवियों ने आपस के रश्क और रकाबत में मिलजुल कर अल्लाह के नबी को तंग कर दिया था। इसी पर मैंने इनसे कहा कि बईत नहीं, अगर अल्लाह के नबी तुमको तलाक दे दें तो अल्लाह तुम से बेहतर बीवियां उनको अता फरमाएगा। इसी तरह हजरत उमर का एक और बयान है, मुझे खबर पहुंची कि उम्महातुल मोमिनीन और नबी सल्लम के दरमियान कुछ नाचाकी हो गई है। इस पर मैं इनमें से एक एक के पास गया और इनसे कहा कि तुम अल्लाह के रसूल को तंग करने से बाज आ जाओ, वरना अल्लाह तुम्हारे बदले तुमसे बेहतर बीवियां अल्लाह के नबी को अता करेगा। यहां तक कि जब मैं उम्महातुल मोमिनीन में से आखिरी के पास गया, और बुखारी में आता कि वो आखिरी उम्मे सलमा थी, तो उन्होंने मुझे जवाब दिया कि उमर, क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम औरतों की नसीहत के लिए काफी नहीं है कि तुम इन्हें नसीहत करने चले हो? यानी अल्लाह के नबी की नसीहत ही बहुत है। इस पर मैं खामोश हो गया और इसके बाद अल्लाह ताला ने यह आयात नाजिल फरमाई। देखिए हजरत उमर है ना, इनके बारे में अल्लाह के नबी का कौल है कि हर उम्मत में कोई एक मुहद्दस होता है। नोट कीजिएगा, मुहद्दस एक होता है, मुहद्दिस मुहद्दस दाल पे जबर है, मुहद्दिस वह जो हदीस रिवायत करे, मुहद्दस दाल पे जबर के साहब इल्हाम जिससे अल्लाह बातें करता है, हदीस कहते हैं बात को। हर उम्मत में कोई ऐसा शख्स होता है जिससे अल्लाह बातें करता है, और अल्लाह के नबी ने फरमाया कि मेरी उम्मत में वो शख्स उमर फारूक है। ये जो उमर की सारी बातें हम पढ़े इसे गलत ना समझे, इनके मशवरे पे और इनकी मवाफकत पे तो कुरान नाजिल होता था, ये अलग इशू है। मुस्लिम की रिवायत है अब्दुल्ला बिन अब्बास से, हजरत उमर कहते हैं कि जब अल्लाह के नबी ने अपनी बीवियों से लहदगी फरमा ली तो मैं मस्जिद नबी में गया, देखा कि लोग फिक्र करते हुए बैठे कंकरियां उठा उठा कर गिरा रहे हैं और आपस में कह रहे हैं कि रसूलुल्लाह ने अपनी बीवियों को तलाक दे दी। इसके बाद उमर ने आयशा और हफ्सा के यहाँ अपने जाने और इनको नसीहत करने का जिक्र किया, फिर फरमाया मैं अल्लाह के नबी की खिदमत में हाजिर हुआ और मैंने अर्ज किया, बीवियों के मामले में आप क्यों परेशान होते हैं? अगर आप इनको तलाक दे दें तो अल्लाह आपके साथ है, सारे मलाइका जिब्राइल और मीकाइल आपके साथ हैं, और मैं और अबू बकर और सारे अहले ईमान आपके साथ हैं। मैं अल्लाह का शुक्र बजा लाता हूँ कि कम ही ऐसा हुआ कि मैंने कोई बात कही हो और अल्लाह से ये उम्मीद ना रखी हो कि वो मेरे कौल की तस्दीक फरमा देगा। हजरत उमर पहले ही बातें कर रहे हैं नबी से, चुनाचे इसके बाद सूरह तहरीम की आयतें नाजिल हो गई। और उमर ये नहीं कहा करते थे कि अल्लाह ने मेरी मवाफकत की, कद वाफक अल्लाह, कहते थे मैंने अल्लाह की मवाफकत की है, यानी अल्लाह ने तो वो नाजिल करनी थी, मुझे पहले से अल्लाह ने दिल में डाल दी, तो लिहाजा यही बात है। और जब ये आयतें नाजिल हुई फिर मैंने अल्लाह के नबी से पूछा क्या आपने बीवियों को तलाक दे दी है? तो आपने फरमाया नहीं। इस पर मैंने मस्जिद नबी के दरवाजे पर खड़े होकर बा आवाज बुलंद ऐलान किया कि अल्लाह के नबी ने अपनी बीवियों को तलाक नहीं दी। क्या वो माँ बाप का दिल होता होगा, सोचिए जरा। देखिए ना, अल्लाह ना करे किसी की भी बेटी घर आए, किसी की भी आए, लेकिन नबी की ज़ौदिया से निकल के अगर कोई वापस आ गई तो वो तो दुनिया आखिरत की रसवाई थी। तो लिहाजा इन सारी बातों को पढ़ते वक्त वो सारे रकीक जज्बात जो है उनको सामने रखिए कि कोई किसी पर मान नहीं कर सकता, मैं फुलाँ हूँ मैं फुलाँ हूँ। अल्लाह ताला किसी वक्त भी बीवी को बदल सकता है, और आप भी अपने ऊपर रखें और मैं भी अपने ऊपर हूँ। कभी इतना मान ना करें अपने ऊपर कि मेरे अलावा अब कोई और औरत मेरे शौहर की ज़िंदगी में नहीं आ सकती। आपको क्या पता कल के पर्दे में क्या छुपा हुआ है? सारी आपकी बातें और अकलें धरी की धरी रह जाती हैं जब अल्लाह की आजमाइश आती है, तो हमेशा अल्लाह के साथ अच्छा मामला रखें। फिर ये सारी औरतें जो हैं खूबियाँ वो आम थी, लेकिन तायबा पर थोड़ी सी बात करूँगी। तायबात तायब का लफ्ज होता है ये सिफत के तौर पर जब आता है ना इंसानों की, तो मानी क्या होता है कि एक ही दफ़ा तौबा करने वाला नहीं बल्कि बार बार तौबा करना, यानी तौबा करता ही रहता है, माफिया मांगता है, शर्मसार अपनी कमजोरियों और लग्जिशों पे शर्मिंदा होता है। ऐसे शख्स में कभी गुरूर और तकबर नहीं होती, खुद पसंदी के जज्बे भी नहीं होते, और तबन तबीयत के एतबार से बाय नेचर नरम मिजाज और हलीम होता है, और आबिदात जो है ना इबादत गुजार। ये आदमी कौन है जो कभी अल्लाह से गाफिल नहीं होता, जैसे इबादत करने वाला हर वक्त अल्लाह ताला के बारे में सोचता है ना, ये भी ऐसा है। और एक औरत को बेहतरीन बीवी बनाने में इस चीज़ का दखल है कि वो इबादत गुजार हो, अल्लाह की हदूद की पाबंदी करे, हक वालों के हक पहचाने, उसका ईमान ताज़ा रहे, जिंदा रहे। फिर ऐसी जब अल्लाह का हुक्म मानेंगी तो दूसरों का भी मानेंगी। सायहात का लफ्ज़ सियाहत से है, सायहून पीछे भी पड़ चुके। पहले दौर में राहिबों को कहते थे दरवेश, क्योंकि कोई सामान नहीं लेते थे साथ, खाने पीने का इस्तेमाल का ज़्यादा राह नहीं लेते थे, चलते रहते थे, अक्सर भी भूखे रहते थे, तो फिर कुछ खाने को मिलता तो खा लेते। इसीलिए रोज़ेदार को भी ये कहते हैं। ये आज आप दोनों का फ़र्क समझ लें, क्योंकि अक्सर ये क्वेश्चन आता है कि सायक सियाहत से तो हुआ तो रोज़ेदार हम इसको क्यों कहते हैं। तो सफ़र और भूख लाजिम मलजूम है। आपकी जेब में पैसे तो होते हैं, खाना कोई नहीं होता, करेंसी नहीं होती वहाँ की, सफ़र में तो भूख की कैफियत अक्सर सफर में होती। इसलिए सायहात को सियाहत करने वाले और रोजेदार दोनों कहा जाता है। दरवेशी ऐसे लोग जो हैं वो ऐसे काम करते हैं। और अल्लाह के नबी ने फरमाया, एक हजरत आयशा का कौल है कि इस उम्मत की सियाहत यानी दरवेशी रोजे में है। तो अच्छी बीवी कौन है जो रमजान के रोजों के साथ नफिल रोजे भी रखती है, और अज़वाजे मुतहरात ऐसी ही थी। फिर इसी तरह आप देखिए कि यहाँ से ये भी पता चल गया कि हर बंदे को अपना मामला खुद निपटना है। आयत 5 तक शौहर बीवी का ही मामला चलता गया, इतनी लंबी बात उसमें हो गई, अब इसमें बच्चों को भी डाल दिया गया। और कुरान का वाहिद मुकाम है जब हम पढ़ने लगे हैं कि जहाँ अल्लाह ने अहले ईमान को आग से बचने का हुक्म दिया है। अमूमन हमारे यहाँ ये होता है कि आग तो काफिरों के लिए, वो इद्दत लिल काफिरीन, लेकिन अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं आयत 6 में, या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अन्फुसकुम व अहलीकुम नारा, ऐ ईमान वालों बचाओ अपने आप को और अपने घर वालों को आग से। तो इसका मतलब कि ईमान वाले भी आग में जाएंगे। तरतीब नोट कर लीजिए, साथ ही साथ देखते जाएं, क्योंकि इस आयत पे दर्स मौजूद है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत दफ़ा इस पे बात होती है, बच्चों की तरबियत के अमूमन जो दर्स होते हैं उसमें हम यही आयत यूज़ करते हैं। तो आपको दावत दूंगी कि आप नेट से बच्चों की तरबियत और बचाओ अपने आप को और घर वालों से, तो आप इसके ऊपर भरपूर लेक्चर सुनें, क्योंकि ये आयत पूरे एक घंटे डेढ़ का तकाजा करती है, जिसमें वो सब बच्चों की तरबियत की बात है। यहाँ मैं इसको सिर्फ तफसीरी नुक्ते आज आपके साथ शेयर करूँगी। पहली बात देखिए, या अय्युहल्लज़ीना आमनू मुज़क्कर के सीगे है, ईमान वाले, लेकिन इसमें बाप के साथ माँ को भी शामिल किया गया। क़ू अन्फुसकुम, सबसे पहले खुद को बचाओ। बस दफ़ा हम अपने बच्चों को बचाना चाहते हैं, खुद को नहीं बचाते। हम कहते हैं हमारे बच्चे बड़े नेक हो जाएं, ये इमाम काबा बन जाए, और ख़ुद अपने शहर की मस्जिद में भी नमाज नहीं पढ़ते, तो ये तरतीब गलत है। पहले खुद को बचाओ। सूरत मायदा में क्या पढ़ चुके, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अलैकुम अन्फुसकुम, ऐ ईमान वालों पहले अपनी तो फिक्र करो। और ये जुमला आप हर जहाज की फ्लाइट के शुरू होने में सुनते हैं कि दूसरों की मदद करने से पहले खुद अपनी मदद कर लें। इन केस ऑफ इमरजेंसी ऑक्सीजन मास्क आपके पास गिर जाएगा, पहले अपना लगा लें, फिर अपने साथ जो आपके बच्चे हैं या बूढ़े हैं उनकी हेल्प करें। क़ू अन्फुसकुम, पहले मैं बचूंगी तो मेरे बच्चे बचेंगे। आप यूं सोचिए जैसे एक ट्रेन है, पहली बोगी में इंजन होता है, फिर पीछे 4-6 बोगी हैं, इंजन की बोगी आप हैं और पीछे की बोगी आपके बच्चे हैं। जिधर इंजन जाता है उधर ही आपकी पूरी गाड़ी जाएगी। माँ गाड़ी का स्टेयरिंग है और बाप कह लीजिए कि उसकी ब्रेक है। जिधर स्टेयरिंग जाता है ना वहाँ पूरी गाड़ी वाले जाते हैं। आप मैं चाहते हैं कि मेरे बच्चे हमारे घर वाले नेक हो जाएं तो हमें खुद नेक होना पड़ेगा, सिंपल सी बात है। वहलीकुम, और अपने घर वालों को नार आग से कू बचाओ। क्या करो, अपने घर वालों को बचाओ। इससे पता चलता है ना कि आग में जाएंगे तभी तो बचाना है। कौन सी आग, वकूदुहन्नास वल हिजारा, जिसका ईंधन लोग और पत्थर होंगे। और क्या है उसकी डिस्क्रिप्शन, अलैहा, उसके ऊपर, हा से क्या मुराद है इधर, आग, मलाइकतुन गिलाज़ुन शिदादुन, तीन चीजें हैं, वो फरिश्ते गिलाज़ तुंदखू और शिदाद सख्त गिर, शिद्दत वाले, गिलास गलीस से गाढ़ा होना, गलजा, पीछे आप पढ़ चुके सूरत आले इमरान में नबी सल्लम की सिफात के मामले में भी, लव कुंता गलीज़ अल क़ल्ब, गलीज़ का लफ्ज़ है ना गाढ़ा, थिक, مراد یہ ہے کہ سختی کرنے والے، شدات شدت برتنے والے، اور تیسری فرشتوں کی خوبی کہ لا یعصون اللہ ما امرہم، نہیں وہ نافرمانی کرتے اللہ کے اس حکم کی جو ان کو دیا جاتا ہے، اور چوتھی بات ویفعلون ما یؤمرون، اور وہ بجا لاتے ہیں جو حکم دیے جاتے ہیں. اس لیے نسلوں کو آگ سے بچاؤ، اپنے آپ کو بچاؤ. یہ ساری آیتیں ہمیں بتاتی ہیں کہ ہماری ذمہ داری صرف اپنی ذات ہی کے لیے نہیں ہے، گھر والوں کے لیے بھی ہے. اور جس گھر کا آپ کو مجھے بڑا بنا دیا گیا اس کی جواب دہی ہوگی. کلکم رائیون، تم میں سے ہر ایک چرواہا ہے، شیفرڈ ہے، اور اس سے اس کی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا. حسب استطاعت اپنے بچوں کی، بیوی کی تعلیم اور تربیت کا انتظام کرنا فرض ہے، اللہ کے بھی پسندیدہ ہوں، بندوں کے بھی پسندیدہ ہوں. اگر جہنم کی راہ پہ چل رہے ہیں ہمارے شوہر یا ہماری بیویاں اور ہمارے بچے، تو جس حد تک ممکن ہو ان کو روکنے کی کوشش کریں، ورنہ وہ آپ کو بھی ہو سکتا ہے اس طرف لے جائیں. بخاری کی روایت ہے ابن عمر کی، جو ابھی میں نے کوٹ کی، کہ تم میں سے ہر ایک راعی ہے، اور تم میں سے ہر ایک سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال ہوگا. حکمران راعی ہے، یعنی جو ملکوں کے صدر اور وزیر ہوتے ہیں نا، ان سے پوری حکومت کا پوچھا جائے گا، اور وہ اپنی رعیت کے معاملے میں جواب دیں. اور مرد اپنے گھر والوں کا راعی ہے، اور اس سے ان کے بارے میں پوچھا جائے گا. اور عورت اپنے شوہر کے گھر اور بچوں کی راعی ہے، اور وہ ان کے بارے میں جواب دے. جہنم کا ایندھن پتھر ہوں گے، پتھر کا کوئلہ. حضرت ابن عباس، ابن مسعود، مجاہد اور چند لوگ اور ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہاں پتھروں سے مراد گندھک کے پتھر ہوں گے. اور جہنم کی آگ کتنی شدید ہے؟ دنیا کی آگ سے 69 ٹائمز گرم. روایت میں تھے کہ 3 دفعہ جہنم کی آگ کو ٹھنڈے پانیوں سے دھویا گیا، پھر دنیا میں ہم اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں. اگر جہنم کی آگ ایز اٹ از لے آئی جائے تو اس سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتا. اس اوون کو ہی آگ لگ جائے، ان چولوں کو ہی آگ لگ جائے، جہاں سے وہ گزرے وہاں آگ لگ جائے، بہت بڑی بات ہے، چھوٹی چیز نہیں ہے. اور فرشتے اپنی مرضیاں نہیں کرتے، ان کے دل میں رحم کا جذبہ نہیں ہے، جو اللہ کہہ دے وہ کرنے لگتے ہیں. جیسے ایک جلاد کی کیفیت آتی ہے. آپ دیکھیے کہ سخت تنبیہ ہے، واحد مقام ہے قرآن کا جہاں ایمان والوں کو آگ سے بچایا گیا. اور پھر اس وقت آپ دیکھیں کہ یہ بات بھی سمجھ آتی ہے کہ کرنے کا طریقہ کیا ہے. اب آپ کہتے ہیں ہم کہاں کھڑے ہیں، کچھ سمجھ ہی نہیں آتی، کیا کریں، ادھر جائیں ادھر جائیں. تو اللہ تعالیٰ نے ان آیتوں کے ساتھ ہی ہمیں دیکھیے ایک نقشہ دکھا دیا، اور وہ کیا ہے؟ یا ایھا الذین کفروا، اے کافرو، لا تعتذروا اليوم، آج معذرتیں پیش نہ کرو. ڈونٹ میک ایکسکیوزز. انما تجزون ما کنتم تعملون، تمہیں تو ویسے ہی بدلہ دیا جائے گا جیسے تم عمل کر رہے تھے. یہ کون سے کافر ہیں؟ جنہوں نے اپنے اور اپنی اولادوں کو آگ سے نہیں بچایا. اس کے اندر آپ دیکھیے کہ اللہ نے کافروں کا لفظ استعمال کیا، نہ شکرے. سوال پیدا ہوتا ہے کہ آج تک تو ہم نے یہ کام نہیں کیا، یا اس حد تک نہیں کیا جیسے کرنا تھا، اب کیا کریں، کہاں سے شروع کروں؟ تو اگلی آیت میں علاج. یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے توبہ کرو، خالص توبہ، پکی سچی توبہ. کیا ہوگا؟ اسا ربکم، بعید نہیں کہ اللہ تمہارا رب کیا کر دے، تمہاری توبہ کو قبول کر دے. کیسے؟ ان یکفر عنکم سیئاتکم، تمہاری برائیاں تم سے دور کر دے، پہلی بات. پھر وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور تمہیں ایسی جنتوں میں داخل کر دے جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. مزید ڈسکرپشن، يَوْمَ لَا يُخْزِي اللَّهُ النَّبِيَّ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ، یہ وہ دن ہوگا جس دن اللہ اپنے نبی کو اور ایمان والوں کو جو اس کے ساتھ ایمان لائے رسوا نہیں کرے گا. کیفیت کیا ہوگی؟ نورهم يسعى بين ايديهم وبايمانهم، سورہ حدید کو یاد کریں، پلسرات پہ پہنچ گئے ہیں. ان کا نور دوڑ رہا ہوگا ان کے آگے اور ان کی دائیں طرف. اور زبانوں پہ لفظ کیا ہوں گے؟ یقولون ربنا اتمم لنا نورنا، وہ کہیں گے ہمارے رب پورا کر دے ہمارا نور. واغفر لنا، اور ہم سے درگزر فرما، شرمندہ ہیں ہم اپنے کیے پہ. کیونکہ انک علی کل شیء قدیر، تو ہر چیز کی قدرت رکھتا ہے. یہاں دیکھیے توبۃ النصوحہ کی بات ہے. پورے قرآن میں بار بار توبہ کا ذکر پڑا، تو یہاں لفظ نصوحہ کو سمجھ لیتے ہیں. نصوحہ کا لفظ نصحہ سے ہے، نسخن نصیحت کا لفظ. نسخ کے معنی عربی زبان میں خلوص اور خیر خواہی کے ہوتے ہیں. خالص شہد کو اصل ناسخ کہتے ہیں جس کو موم اور دوسری علائشوں سے پاک کیا گیا ہو. پھٹے ہوئے کپڑے کو سی دینا, یہ دیکھیے گا ذرا آپ کو توبہ کا کتنا خوبصورت کانسیپٹ سمجھ آئے گا. اس ایک لفظ پہ غور کرنے سے کپڑا پھٹ جاتا ہے نا, اس کی دھجی نکل جاتی ہے. پھر آپ کیا کرتے ہیں, ایک اور کپڑا لیتے ہیں, پیچ ورک جس کو آپ کہتے ہیں, وہ کپڑا اس کے اوپر رکھتے ہیں, پھر اس کی مرمت کرتے ہیں. اس کو عربی زبان میں نساحت الصوب کہتے ہیں. تو توبۃ النصوحت کیا ہے؟ جس گناہ سے تمہاری روح کے اندر دھبے پڑ گئے تھے, دھجیاں بکھری ہوئی ہیں تمہاری روح کی, اس پہ توبہ کا پھاہا لاؤ اور اس کو سی دو ندامت کے آنسو سے. یہ ہے توبۃ النصوح, خالص توبہ, پکی توبہ. توبہ نصوحہ ہوتی کیا, پوائنٹس نوٹ کر لیجئے. خالص توبہ جس میں ریا نہ ہو, ریاکاری نہ ہو, نفاق کا شبہ تک نہ ہو, انسان خود اپنے نفس کے ساتھ خیر خواہی کرے, گناہ سے توبہ کر کے اپنے آپ کو بدنامی سے بچا لے, اپنی زندگی کی اصلاح کر لے, اس کو سنوار لے, اور ایسی توبہ کرے جو دوسروں کی نصیحت کا ذریعہ بنے. لوگ کہیں اچھا اس نے توبہ کر لی ہے تو میں بھی کر لوں, اس کی مثال کو دیکھ کر دوسرے اصلاح کریں. یہ تو ہے توبۃ النصوحہ کا مفہوم. اب سوال پیدا ہوتا ہے توبۃ النصوحہ حدیث کی روشنی میں کیا ہے؟ تو عبی بن کعب سے توبۃ النصوح کا مطلب پوچھا گیا. کہتے ہیں میں نے بھی رسول اللہ سے یہی سوال کیا تھا. آپ نے فرمایا, اب یہ میرے اور آپ کے لیے ایک چیک لسٹ ہے, اس سے مراد یہ ہے کہ جب تم سے کوئی قصور ہو جائے, ہوتے ہیں ہم سے قصور, دن رات ہوتے ہیں, جب تم سے کوئی قصور ہو جائے تو اپنے گناہ پر نادم ہو, یہ پہلا درجہ ہے, شرمندگی. پھر شرمندگی کے ساتھ اس پر اللہ تعالیٰ سے استغفار کرو, دوسرا درجہ. پھر تیسرا, اور آئندہ کبھی اس فعل کا ارتکاب نہ کرو. اگر آپ ان تینوں جملوں کے آگے لکھ لیجئے توبہ کا تعلق ماضی, حال اور مستقبل سے ہے. ماضی کیا؟ پچھلے گناہوں کی شرمندگی. حال کیا ہے؟ آج کی اصلاح. اور مستقبل کیا ہے؟ کہ آئندہ کبھی نہیں کروں گی, آئی ول ناٹ ریپیٹ دس. حضرت عمر نے توبۃ النصوح کی تعریف کیا کہ یہ اس کو لکھ لیں اور ہم اپنی توباؤں کو چیک کریں جو بار بار کرتے ہیں اور پھر توڑتے ہیں. کہتے ہیں کہ توبہ کے بعد آدمی گناہ کو دہرانا تو دور کی بات, اس کے ارتکاب کا ارادہ تک نہ کرے, سوچے بھی نہ کہ میں یہ کبھی کام کروں گا. حضرت علی نے ایک مرتبہ ایک بدو کو جلدی جلدی توبہ استغفار توبہ 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 کے الفاظ زبان سے ادا کرتے سنا, جیسے لوگ کرتے ہیں نا, استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ, تو کہنے لگے یہ تو توبۃ الکذابین ہے, یہ تو جھوٹوں کی توبہ ہے. اس نے پوچھا اچھا پھر صحیح توبہ کیا ہے؟ تو فرمایا کہ اس میں چھ چیزیں ہونی چاہیے, یہ لکھ لیجئے, اس کو شرائط بھی کہتے ہیں, شروط توبہ. نمبر ایک, جو کچھ ہو چکا اس پہ شرمندہ ہوں. پھر دوسری, اپنے جن فرائض سے غفلت برتی ہو ان کو ادا کریں, یعنی اگر فرائض میں کچھ کمی تھی اب آئندہ سے پکے ہو جائیے. تیسرا, جس کا حق مارا ہو اس کو واپس کر دو, حقوق العباد سے اس کا تعلق ہے. پھر چوتھی, جس کو تکلیف پہنچائی ہو اس سے معافی مانگ لو. اور پانچویں, آئندہ کے لیے عزم کر لے کہ اس گناہ کو دوبارہ نہیں کروں گی. اور چھٹی, یہ سب سے مشکل ہے, اپنے نفس کو اللہ کی اطاعت میں گھلا دے, جس طرح تو نے اب تک اسے گناہوں کا عادی بنایا تھا. سمجھ گئی؟ جس جسم کو گناہوں میں موٹا کیا ہے اس کو اللہ کی فرما برداری میں پتلا کر دو, پسینہ بہاؤ, خون جلاؤ, قدم چلیں تمہارے, اور اس کو اطاعت کی تلہی کا مزہ چکھاؤ جس طرح تو نے اسے گناہوں کی حلاوت کا مزہ چکھایا تھا. بات تو واضح ہی ہے نا, جیسے گناہ انجوائے کرتے تھے اب ذرا نیکیاں انجوائے کرو. چند باتیں اور توبہ کے لیے فائدے کی ہیں اس لیے بول رہی ہوں. پہلی بات یہ کہ توبہ در حقیقت کسی معصیت پر اس لیے شرمندہ ہونا کہ یہ اللہ کی نافرمانی ہے. سمجھ آ رہے ہیں؟ گناہ کیوں چھوڑے؟ اللہ کی نافرمانی سمجھ کے. مثلا کوئی شراب پیتا تھا, اب ڈاکٹر نے کہہ دیا شراب نہ پیو تو وہ چھوڑ دے, تو کیا یہ توبہ ہوگی؟ توبہ نہیں ہوگی. सेहत की खराबी के लिए कोई अगर सिगरेट या कोई नशे की चीज़ छोड़ता है, या बदनामी के खौफ से छोड़ता है, या माली नुकसान है जी कि पैसे ही नहीं है कि मैं शराब खरीदूं, तो ये तौबा नहीं है। बात वाज़ेह, यानी गुनाह को अल्लाह के खौफ के लिए छोड़ना है। दूसरी बात, जिस वक्त इंसान को एहसास हो जाए कि इससे अल्लाह की नाफरमानी हुई है, इसी वक्त तौबा करें, देर ना करें, डोंट डिले। कहते हैं ना कि तौबा को डिले करें तो वो चली जाती है। और जिस शक्ल में भी मुमकिन हो, बग़ैर वक्त ज़ाया किए उसकी तलाफी करें, यानी तौबा को टालना मुनासिब नहीं है। तीसरी बात, तौबा करके बार बार उसे तोड़ते जाना, ये तौबा को खेल बनाना है कि उसी गुनाह को दोहराते जाएं, ऐसा नहीं करना। इसी तरह तौबा के झूठे होने की दलील क्या है, यानी झूठी तौबा क्या है, कि तौबा की जो रूह है ना शर्मसारी, वो दिल में ना हो। इंजॉय करें, लोग सुनाते हैं क्या मज़ा आता था, क्या मूवियाँ बनाते थे, क्या रातों को जागते थे, क्या कज़न्स के साथ बैठते थे, ये ना हो, बल्कि गुनाह का तसव्वुर आते ही आंखों से आंसू बह जाए, फिर उसको फ़ायदा होगा। फिर एक और बात आगे, जो शख्स सच्चे दिल से तौबा करके ये इरादा कर ले कि अब ये गुनाह नहीं करूँगा, इसके बावजूद अगर बशरी तकाजे से कोई कमज़ोरी से गुनाह हो जाए, तो फिर उस गुनाह को छोड़ दे तो अल्लाह ताला माफ़ कर देगा, यानी इंसान होने का बेनिफिट उसको दिया जाएगा। फिर हर मर्तबा जब अपना गुनाह याद आए, तो ज़रूरी नहीं कि तौबा की तजदीद करें, एक दफ़ा सच्चे दिल से तौबा कर चुके हैं ना, मौका बने तो कह दें इस्तग़फ़ार, दिल से कह दें तो ठीक है। अगर आपका नफ्स अब उस पर शर्मसार है, तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला उसको माफ़ कर देगा। बस लोग कहते हैं अच्छा गुनाह याद आता है जिसका अंदर कि तौबा कबूल नहीं हुई, ऐसा नहीं है। असल आपकी कैफियत है कि आप उसको इंजॉय करते हैं या आपको पसीना आ जाता है। शेयर भी हैं कुछ के जो कतरे थे मेरी जबीन पे शर्मसारी के, अल्लाह ने उनको चुन लिया शान करीमी से, कुछ इस तरह के जो मेरी माथे से पसीना गिरा था शर्मसारी का, अल्लाह ने उसको मोती बना के चुन लिया। तो असल चीज़ शर्मिंदगी है, इंशाल्लाह फिर फ़ायदा होगा। फिर आप देखिए जन्नतों की खुशखबरियाँ और सब कुछ कर करा के ये करने के बाद, अब आखिर में चलिए आप देखिए कि जो पुल सरात की बातें हैं, आयत 12 और 13 सूरत हदीद में हम पढ़ चुके हैं, किस तरह वहाँ डिटेल से बात हुई थी कि तरब बस तुम व फतन तुम, और तुमने ख़ुद को फितनों में डाला, यहीं सारा कुछ करना है, वहाँ जाके नहीं करना। आप अपने आप को चंद मिनट के लिए इमेजिन करना चाहते हैं, पुल सरात पे खड़े हैं, हर तरफ घुप अंधेरा, ठोकरें खा रहे हैं, एक तरफ दोजख नीचे और आगे जन्नत, और आप वहाँ रास्ते ले रहे हैं, और लोग रो रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर ऐसी इल्ज़ामात धर रहे हैं, और ईमान वालों पर खशियत है, उनको डर ये कि कहीं हमारा नूर भी ना यहाँ छिन जाए और हम भी इनकी तरह ठोकरें ना खाएं। और ऐसे वक्त में दुआएं ज़ुबान पर रब्बना अतमिम लना नूराना। इब्ने अब्बास कहते हैं कि वो अल्लाह से दुआ करेंगे कि इनका नूर उस वक़्त तक बाकी रखा जाए और इसे बुझने ना दिया जाए जब तक वो पुल सरात से बखरियत ना गुजर जाए। इसी तरह एक कौल है कि अहले ईमान जब देखेंगे कि मुनाफिकीन नूर से महरूम रह गए, तो वो अपने हक में अल्लाह से नूर की तकमील की दुआ करेंगे। तो आज दुनिया में अधूरे नूर से पूरी रोशनी तो नहीं मिलेगी ना। यहाँ पे सूरत का एक एंड हुआ। अल्लाह ताला ने ईमान वालों को एक सच्ची तौबा करने की दावत देकर पुल सरात तक पहुँचा दिया।